ओम शांति। आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी का हम सभी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। भाई साहब को देखकर ही हम सबको ऐसा लगता है आज खुशी का ही माहौल है, जैसे कि विषय ही है खुश मिजाज और खुश नसीब। जो खुश नसीब है वो खुश मिजाज है और जो खुश मिजाज है वो खुश नसीब भी है। इस विषय पर बहुत सुंदर क्लास कराएंगे और आप सब भी अनुभव करेंगे कि सचमुच हमको बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे खुश नसीब हैं। आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, आप पंजाब की धरनी से निकले, बीकॉम एलएलबी वीसीए 1973 से अब तक सेक्रेटरीज, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी 1959-1973, डिप्टी फाइनेंस मैनेजर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ब्रह्मा कुमारीज में संपूर्ण समय देने के लिए आपने त्याग पत्र दे दिया। ब्रह्मा कुमारीज के साथ सहभागिता, विधि के विद्यार्थी के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली मुलाकात, द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सेवा करते हुए भी भारत के राज्यों पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की सेवा जोन इंचार्ज भी थे, 1973 से आप विश्वविद्यालय के पूर्णकालीन सेक्रेटरी हैं, दिल्ली सेवा जोन के उत्तरदायित्व आप ही हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक समाचार मासिक पत्रिका प्यूरिटी के एडिटर हैं। आप 8 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले राजयोग करेस्पोंडेंस कोर्स के लेखक एवं डायरेक्टर हैं एवं ब्रह्मा कुमारीज के अनेकों अन्य प्रकाशनों के भी लेखक हैं। आप भारत और समुद्र पार देशों के अधिक मात्रा में यात्रा यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि के रूप में कर चुके हैं एवं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित कर चुके हैं। 1981 में आप नैरोबी केन्या की कॉन्फ्रेंस में ऑरिजिन ऑफ पीस की प्रमुख वक्ता थे। आपने यूएसए यूके त्रिनिदाद बारबाडोस गुआना वेस्ट जर्मनी की यात्रा 1985 में की, जबकि यूएसए में आपने यूनाइटेड नेशन में पीस माउंटेन्स प्रस्तुत कर भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ईयर ऑफ द्वारा मिलियन माइंडलिस्ट ऑफ पीस अपील एकत्रित की। आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, जिनका मैं 2 शब्द कहूंगी, प्रीति को पावन बनाना आपसे सीखे कोई, सद्गुणों से जीवन सजाना आपसे सीखे कोई, जिंदगी का खुशनुमा सफर कह रहा है भगवान को भी अपना बनाना सीखे कोई आपसे। आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी,
ओम शांति। सब भाई बहन मिलके बोलो, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा और शुक्रिया बाबा। आज हम सब इस विशाल डायमंड हॉल में डायमंड युग में इकट्ठे हुए हैं। बाबा कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह, और हम क्या कहते हैं, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि बाबा तो चले जाएगा, आपको भाग्य दे जाएगा, और कितना बड़ा भाग्य दे जाएगा, भाग्य विधाता जो सारी दुनिया की किस्मत को लिखने वाला है वो हमारा पिता है। इतना बड़ा भाग्य दे जाएगा जो के आधा कल्प चलेगा, तो इससे बड़ा खुशी का कारण कौन हो सकता है, इससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है। और जिसको हर समय इस खुश नसीबी का नशा रहेगा, इससे बड़ा खुश मिजाज भी कौन हो सकता है। तो दुनिया में सबसे बड़े खुश नसीब कौन हैं, हम बच्चे। अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, सबसे बड़े खुशनसीब कौन हैं, और फिर सबसे बड़े खुश मिजाज कौन हैं, हम बच्चे। तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए अपने दाई तरफ के भाई या बहन को देखकर मुस्कुराओ, सब अच्छी तरह आत्मा समझ के खुश मुस्कुराओ। आप तो ताली बजा रहे, आपको मजा नहीं आया मुस्कुराने का? अपने खुश सारे खुश नसीब बैठे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि लोग समझते हैं कि पहले हेल्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, फिर वेल्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, फिर जाके हैप्पीनेस यानी खुशी आती है। तो पहले हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश करते रहते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं, तो खुशी पाने की भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस ज्ञान में जो दुनिया समझती है उससे अलग, उससे बिल्कुल उल्टा सच होता है, क्योंकि झूठी दुनिया है। आज भी बाबा ने कहा झूठी दुनिया है, सारी बात ही झूठी करते हैं, आत्मा जाके लीन हो जाती है। तो झूठी दुनिया में सच को जानना हो तो झूठ को उल्टा करना पड़ता। तो वो कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हम क्या कहते हैं उसका विपरीत, खुशी से ही स्वास्थ्य है, खुशी से ही धन है। इसलिए नोट कर लीजिए, स्वास्थ्य बनता खुराक से, खुशी जैसी खुराक नहीं। जिसको खुशी की खुराक मिलेगी वो स्वस्थ तो रहेगा ही, खुशी जैसा खजाना नहीं। सुना है आपने ना कभी, खुशी जिसको मिल गई सब कुछ मिल गया, और जिसको सब कुछ मिल गया खुशी नहीं मिली उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए खुशी फर्स्ट, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी ही खुशी है। फिर बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा है कि ये एक बड़ी करामत है कि दुनिया में और चीज आप किसी को दोगे तो घट जाएगी। आपके पास दो कंबल हैं, एक दूसरे को दे दिया तो एक रह जाएगा, लेकिन खुशी अगर दूसरे को बांटोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो देखो, पहले चीज इतनी फर्स्ट क्लास, फिर उसको बांटो तो और बढ़े, तो क्या करेंगे, सारा दिन बांटते रहेंगे और बढ़ती रहेगी। एक मोमबत्ती से दूसरी जलाओ तो पहली की लाइट भी कायम रहती है, दूसरी में भी लाइट आ जाती है। अगर सारी मोमबत्तियां जल जाएं तो दिवाली हो जाती है। इसलिए इस पॉइंट को याद रखें कि मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ा भाग्य जो भाग्य विधाता ने दिया है वो है खुशी, और खुशी मेरी बढ़ती रहे बढ़ती रहे, क्योंकि चढ़ती कला है, तो मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। इससे ज्यादा और किसी को कुछ चाहिए? इसलिए बाबा कहता है तुम हो क्या, बेफिक्र बादशाह। अगर बादशाह भी हो गया पर उसको फिक्र हुआ तो काहे का बादशाह, ठीक है ना? और फिक्र नहीं है तो फकीर भी बादशाह है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी खुशी को सबसे बड़ी पूंजी मानते हुए इसको चारों तरफ से बचा के रखना है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होता है किसी को पता लग जाए इसके पास बहुत धन है तो लूटने वाले भी उसी का ध्यान रखते हैं। तो माया भी क्या करती है, वो औरों के पीछे नहीं जाएगी, और तो ऑलरेडी उसके अंडर हैं, हमारे पीछे आएगी कि इनको खुशी कैसे हो गई, रोने की दुनिया में, दुख की दुनिया में ये खुश कैसे रहते हैं। इसलिए उसको बड़ी ईर्ष्या है। तो हमें देखना है, देखो खुशी बढ़ाने के लिए हमारे चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बढ़ाते हैं। ज्ञान का सब्जेक्ट ले लो, अब ज्ञान आप दूसरे को सुनाओगे तो आपका ज्ञान घट जाएगा या बढ़ेगा, और दूसरा तीसरे को सुनाएगा। ऐसे ब्रह्मा बाबा से शुरू हुआ तो आज देखो लाखों भाई बहन ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बढ़ ही रहा है ना। तो पहला सब्जेक्ट ही बढ़ाने वाला है, और खुशी भी बढ़ेगी, दूसरे का आशीर्वाद भी मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन सा है भाई, बोलो कुछ। हाँ, नहीं तो हम समझेंगे आप सो रहे हैं, सोने का टाइम है। दूसरा सब्जेक्ट है योग। योग का तो मतलब ही जोड़ना होता है, लेकिन योग भी आप लगाते हो तो आपकी शक्ति बढ़ती है ना। दूसरे से लगवाते हो उसकी भी बढ़ती है, तो ये भी बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, घटाना इससे घाटे का तो सौदा ही नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका धारणा। अब धारणा का तो मतलब ही होता है लेना है? तो आपने जो दैवी गुण धारण किए, अगर आपने किसी दूसरे को भी दिए तो आपके घटेंगे या बढ़ेंगे है? मान लो एक गुलाब का खुशबूदार फूल है, उसको किसी ने जोर से उससे खुशबू ली तो फूल की घट गई क्या? घट गई नहीं। तो इसलिए दैवी गुण भी फैलने वाली चीज है, और सेवा का तो मतलब ही क्या होता है, कर सेवा का मेवा, सेवा करते जो आशीर्वाद मिलता ही जाएगा। तो दुनिया में ऐसा और कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें घाटे का खतरा ना हो है? और अपना बिजनेस कैसा है जिसमें फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। ज्ञान योग धारणा सेवा करते जाओ और आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, इससे अच्छा और क्या है। लेकिन अंदर से सब ब्राह्मणों को पता है हमारे पास इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, दुनिया में किसी के पास नहीं, ये तो सबको पता है। अगर कभी खुशी किसी कारण से एक्सीडेंट होने से घट भी जाए तो इतनी बाबा ने शक्ति बच्चों को दी हुई है, ज्ञान की, योग की, नित्य स्नान की, अमृत वेले की, सेवा की, कि अगर आप बिल्कुल लेट जाओ धरती पर एक सेकंड में आप उठ के उड़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि खुशी ही उड़ाती है। मान लीजिए आप बाबा कहते हैं उड़ती कला में रहो, हर वक्त बच्चे उड़ते रहो उड़ाते रहो, तो आप खुशी में रहेंगे तो उड़ रहे हैं। लेकिन अगर खुशी के अंदर किसी का जैसे हवाई जहाज का पेट्रोल बंद हो जाए तो नीचे आ जाता है, इसी प्रकार से आपकी खुशी रुकी आप धरती पर आ जाओगे, फिर खुशी करोगे फिर ऊपर जाओगे। तो प्लेन को क्या करना, बार बार ऊपर आना नीचे आना थोड़ी करना होता है, उड़ता ही रहे। इसलिए बाबा ने हमें जो चार बातें हमारी मेन हैं उसको टाइट रखना, उसकी विस्मृति हुई, उसका स्विच ऑफ हुआ तो खुशी घट जाएगी, गुम हो जाएगी। जैसे बिजली का स्विच ऑफ कर दो अंधेरा, स्विच ऑन कर दो तो रोशनी, रोशनी में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा, अंधेरा होगा तो रस्सी को सांप समझेंगे, सांप को रस्सी समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, टकराने का भी खतरा है। इसलिए स्विच किसका ऑन रखना है, जिसको कहते हैं एक शब्द में स्मृति। हमें स्मृति में रहना है, स्मृति मैंने जागना, विस्मृति मैंने सोना। तो हम रोज गाते हैं, भक्ति में भी गाते थे क्या, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। अमृत वेले भी एक रिकॉर्ड लगता है ना। इसलिए चार बातों की स्मृति हमें रहनी चाहिए, बस फिर आपकी खुशी का गुब्बारा कभी पंचर नहीं होगा। वो क्या है, पहली स्मृति हमारी ये है जो बाबा ने हमें हमारे बारे में सत्य बताया, जहां से सत्य शुरू होता है और असत्य खत्म होता है। जो फर्क दुनिया में और बाबा के बच्चों में है, पहली स्मृति क्या है, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये हमारी पहली स्मृति है। इस स्मृति के बगैर खुशी हो ही नहीं सकती। देह भान के कितने भी लोगों को देख लो, जिसका भी आपको दिल लगता कि बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, उसके पास सुख के साधन होंगे, खुशी नहीं होगी। सुख और चीज है, खुशी और चीज है। सुख के साधनों से खुशी पैदा होती है। खुशी स्पिरिचुअल चीज है, साधन स्थूल चीज है। मोटर कार स्थूल चीज है, मकान स्थूल चीज है, रुपया पैसा भी स्थूल चीज है, लेकिन उससे खुशी मिलने वाली है वो सूक्ष्म चीज है। तो इसलिए जिस आत्मा भी सूक्ष्म है, तो जो आत्मा का ज्ञान रखते हैं मैं आत्मा हूं, वो खुशी में रह सकते हैं। जो नहीं रखते वो सुख के साधन इकट्ठे कर सकते हैं, खुशी में नहीं रह सकते। वो झूठी खुशी समझते हैं, हलवा खा लिया खुशी हो गई। एक दिन ऐसा होगा तुम्हें दलिया खाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? एक दिन बर्ड वेजिटेबल खाना पड़ेगा, ये कोई खुशी नहीं है। खुशी स्थाई चीज है। इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, खुशी भी अजर अमर अविनाशी चीज है। तो अविनाशी चीज को अविनाशी में कैसे डाल सकते हो? कोई कह दे खुशी तो मुझे चाहिए सदा के लिए। अच्छा, तुम्हें मिल जाए तो रखोगे कहां? आपको कोई चीज परमानेंट मिल जाए तो रखोगे कहां? टेम्परेरी बॉडी में। अगर रखने वाली चीज ही टेम्परेरी है, जिस नाव को डूबना ही डूबना है उसके अंदर आपने खुशी रख ली, नाव डूबी खुशी भी डूब गई, आपका शरीर छूटा, आप मरे जग पर ले। इसलिए बाबा ने हमको सबसे पहला लेसन, जो गीता के भगवान का पहला लेसन आज की गीता में भी लिखा हुआ है, और जो सत्य है उसके बगैर सारा झूठ ही झूठ है, वो क्या है? मैं आत्मा हूं। आत्मा थी भी, है भी, रहेगी भी। आत्मा में जो संस्कार डालोगे आगे जाएगा, बाकी सब चीज यहीं रह जाएगी। तो ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया कि आत्मा में अच्छे संस्कार भर लो, आत्मा में गुण भर लो, शक्तियां भर लो, तो देखो यहां भी खुशी, आगे भी खुशी, आत्मा उड़ती रहेगी। तो इसलिए आपकी खुशी जब तक कायम रह सकती है, कई बार बाबा कहते हैं कि यहां आते हैं बच्चे बड़े खुश, बड़े खुश, वाह वाह वाह, हमें तो अशरीरी हो गए, स्वर्ग लग रहा है। रेलवे स्टेशन तक जाते हैं तो सोडा वाटर हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? यहां के लिए थोड़ी है, तो ले जाने के लिए है। इसीलिए कि आत्माभिमानी है, बाबा याद है, टेंट में रहकर भी खुश हैं, भीड़ में खाना खा के भी खुश हैं। वहां आत्मा भूली, सारा कुछ भूल गया, शरीर दुख ये वो नजर आने लग गया। इसलिए आप नोट कर लीजिए, अनुभव होगा आपका कि जो ही आप आत्मा से बॉडी में आए, आपकी अलौकिक खुशी गई, लौकिकता में आ गए, अल्पकालिक क्षण भंगुर चीजों के पीछे जाने लगो। इसलिए खुशी को कायम रखने के लिए अपने आप को सदा खुश नसीब तो हम हैं ही, लेकिन उसके ऊपर विस्मृति का पर्दा बॉडी कॉन्शियस डाल देता है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस आपको इस जन्म की बात सुनाएगा और सोल कॉन्शियस आपको सारे चक्कर का ज्ञान देगा। बाबा ने भी कहा सुदर्शन चक्करधारी बनो, अपने सारे चक्कर को याद करो, तो आत्मा ही करेगी ना चक्कर को याद। इसलिए पहला लॉक जो लगाना है ताकि खुशी हमारी को कोई चोरी ना कर ले, वो है मैं आत्मा हूं। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि मैं आत्मा किसकी संतान हूं, वो बहुत जरूरी है। आजकल डबल लॉक के बगैर तो चोर जल्दी से लूट लेता है, क्योंकि अगर आपने अपने को आत्मा मान भी लिया, पहली बात कि आत्मा की शक्ति लिमिटेड है, हम सब आत्माओं की शक्ति तो है, लिमिटेड है, और फिर आत्मा अभी प्योर बन रही है, 100% प्योर नहीं है। 100% प्योर होगी तो ये शरीर छूट जाएगा, और क्योंकि नहीं है तो आत्मा धोखा भी खा लेती है। जैसे किसी को लूट लेते हैं, कोई रावण का की जगह साधु का रूप बना के आ जाता है, होता रावण है, आपको लूट लेता है, लूटने का मतलब आपकी खुशी ले जाता है। तो इसलिए आत्मा की एक तो लिमिट है, उसके कारण से अपनी शक्ति ही लिमिटेड है, तो जब बाहर की परीक्षा जरा नई तरह की आती है तो खुशी भूल कर घबरा जाते हैं। आप सोचो, आपने ये हम भूल जाते हैं कि अभी हमारी स्टडी जारी है, हमारी चढ़ती कला है, अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। तो जिस स्टूडेंट ने 8वीं क्लास का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया हो, उसकी खुशी का क्या कहना, खुश रह रहा, मस्त हो गया, अरे मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, घर वाले भी खुश हैं, टीचर भी खुश हैं। लेकिन 9वीं की पढ़ाई नहीं पढ़ रहा और अगली परीक्षा 9वीं की आ गई तो क्या होगा? 8वीं की किताबों से जब आप 9वीं की परीक्षा दोगे तो क्या हाल होगा आपका? हैं? घबरा जाओगे, अरे ये तो नई बात आ गई, और फिर खुशी गायब, फिर तो पढ़ाई में लग गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा ये याद रखो, मैं स्टूडेंट हूं, जहां तक जीना है क्या करना है, ज्ञान अमृत पीना है। तो आत्मा मानने से कभी कभी अभिमान आ जाता है कि मैं ज्ञानी, मेरे जैसा कौन, तो इसलिए मैंपन आ जाता है। तो ये जो मैंपन है ये आपकी खुशी को गायब कर देगा। कितनी भी आपके अंदर विशेषताएं हो, कितना भी कपड़ा सफेद हो, अगर एक दाग बड़ा सारा लग गया तो लोगों ने बाकी सफेद कपड़े को नहीं देखना, आपके दाग को ही देखना। आपको खुद भी महसूस होगा कि पांव में सिर्फ कांटा है पर मैं भाग नहीं सकता, सारा बॉडी ही कैपेबल नहीं रहती क्योंकि पांव में कांटा है। इसलिए आत्मा मानने से मैंपन आने का बहुत खतरा है। तब बाबा कहते हैं कि खुशी कायम रखने के लिए मैंपन आना नहीं चाहिए, निमित्तपन आना चाहिए। बाबा ने लास्ट वर्ड क्या कहे थे, निमित्त निर्माण। तो निमित्तपन कब आएगा, जब बाबा साथ होगा। ये हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा भाग्य बना रहे हैं। जो मेरा छोटा सा भी गुण था उसको पिताजी ने लेकर के उसको बढ़ाया है, सारा उसका बाबा ही भाग्य बना रहा है। कहीं मैंने अपना कनेक्शन काट लिया, जैसे फूल को आप पौधे से काट लो, पानी में रख दो, कितने दिन फ्रेश रहेगा। इसलिए ये धोखा हमें नहीं खाना कि मैं जितना ले लिया उतना ठीक है, उतना तो आपको मुबारक है, लेकिन बैटरी को जब तक चार्ज नहीं करते रहोगे बैटरी डाउन हो जाएगी। रोज आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो, उसका ख्याल रखते हो, और अपनी बैटरी को चार्ज करने का, बैटरी आपकी सतयुग से कलयुग तक चलनी है, अभी तो उसको यूज नहीं करो, अभी तो बाबा है इसलिए उसको चार्ज करो। तो दूसरी खुशी का कायम रखने का लॉक क्या है, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा। और हमको जितनी शक्तियां बाबा ने दी हैं, बाबा कहते हैं दुनिया में किसी को भी परलोक का ज्ञान नहीं, किसी को भी सूक्ष्म वतन का ज्ञान नहीं, किसी को भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आगे क्या होना है ज्ञान नहीं। कोई लोग ज्योतिषी से पूछते हैं आगे क्या होना है, और बाबा ने आपको घर बैठे बताया हुआ है आगे नहीं, सारा कल्प क्या होना है। दुनिया वाले हिस्ट्री पास्ट की पढ़ाते हैं, बाबा फ्यूचर की हिस्ट्री पढ़ाता है, ऐसा कोई हुआ दुनिया में? इसलिए बाबा कहते हैं आपको कितनी शक्ति दी है। अच्छा, कभी आप कमजोर भी फील करो, बाबा को याद कर लो, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा के साथ हो गए, बाबा को साथ रखो। तो इसलिए पहला लोक मैं आत्मा हूँ, बॉडी माना तो खुशी गायब। दूसरा लोक मैं परमात्मा की संतान हूँ, बाबा मेरे साथ है, तो उससे तो आपकी खुशी को माया को हिम्मत ही नहीं होगी छीनने की। अच्छा, तीसरा लोक हम क्या करते हैं कि छोटी पहली बात तो यह है कि हम अपने मालिक, जिसको कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि आप 100 राज्य अधिकारी बनो, हम अपने मालिक हैं, आपके मन को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, आप अपने मन के मालिक हैं। और आपके मन के मालिक होते हुए कोई आपके मन को मालिक आप हैं और इधर को घुमा दे तो लापरवाही हो गई ना, कि मैंने सावधानी नहीं रखी, जाना मैंने इधर था, पता भी नहीं लगा इधर को कैसे जा रहा हूं। तो आप देखेंगे कैसे आपके मन को घुमाया जाता है। दूसरा व्यक्ति आपको आके कहता है ये झूठा है, तुमने झूठ बोला, आपने तो झूठ बोला नहीं, तो आपको ख्याल आता है हैं मुझे झूठा कह दिया, मैंने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सुना, झूठ बोला ही नहीं मैंने। आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि भाई ये क्या हुआ, सच्चे को झूठा कह रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी दूसरों के आगे वैल्यू घटा रहे हैं, दूसरे के मन में मेरे लिए भ्रम डाल रहे हैं, मेरी बड़ी दीदी को भी कह दिया झूठा है, हैं मैं झूठा हूं, आप हो गए डिस्टर्ब। तो क्या करना है? अब आप सोचो, कह रहा है दूसरा, बोल दूसरा झूठ बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है कि मैं झूठा हूं, तो मुझे ज्ञानी होने के नाते डिस्टर्ब होना चाहिए? जो झूठ बोल रहा है वो भुगतेगा ना, जो करेगा वो भरेगा या मैं भरूंगा? ऐसा तो नहीं करे कोई भरे कोई, गलती वो कर रहा है और डिस्टर्ब मैं हो रहा हूं। अच्छा, अगर मैं झूठा हूं और किसी ने झूठा कह दिया तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, झूठे के झूठा कहने में तो कोई गड़बड़ नहीं। और अगर मैं झूठा नहीं हूं और उसने मुझे झूठा कह दिया तो मैं झूठा थोड़ी बन जाऊंगा? तो मैं उस समय एक प्रकार की ड्रामा को भूलकर, ज्ञान को भूलकर प्रभाव में आ जाता हूं कि इसने सच्चे को झूठा कैसे कह दिया। फिर ऐसे भी होता है, हमारा यज्ञ है, बड़े बड़े सेंटर हैं, अब सेंटर में किसी ने झूठ बोल दिया। अच्छा, उसने वो झूठ बोल दिया तो हम उससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे भगवान के घर में झूठ बोल रहा है ये, हैं? मैं डिस्टर्ब हो गया। तो बताओ, वो झूठ बोल रहा है, भगवान के घर में कई तरह के लोग आते हैं, अभी सारे ठीक हो रहे हैं, तो मैं क्यों डिस्टर्ब हो गया? इसलिए आप देखेंगे कि हम एक तो बाहर के प्रभाव में आ जाते हैं। जो आत्मा अपनी स्टडी में स्थित रहेगी, सदा स्मृति में रहेगी, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, वो इन चीजों के अंदर आने नहीं देगी, इन चीजों को। जैसे आसपास किसी के आग जलाते हैं कि जानवर ना घुस आए, तो आपको ये किला अपना मजबूत रखना है। तीसरी बात है ड्रामा। बाबा ने कहा मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान का दिया हुआ है ड्रामा, और ड्रामा में भी क्या दिया हुआ है कि जो हो जाए फुल स्टॉप लगा दो। इंग्लिश भाषा में भी हर सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, पेट्रोल भरवाने के बाद भी पेट्रोल वाला कहता है देखो मीटर जीरो है, शुरू में भी कहता है मीटर जीरो है, टैक्सी वाला स्कूटर वाला भी कहता है मीटर जीरो देखो। तो हम अपनी जिंदगी का मीटर जीरो क्यों नहीं करते, जबकि हमारे पास ड्रामा का ज्ञान है? एक तो है गलती करना, गलती हो गई, दूसरा उस गलती का पश्चाताप करना, हाय मेरे से गलती हो गई, क्यों हो गई, क्यों नहीं होती, कैसे होता, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता तो टाइम वेस्ट गया, संगम का टाइम। तो बाबा कहते हैं संगम के एक संकल्प का भी कनेक्शन आपके अगले 21 जन्मों से है, इतना इम्पोर्टेंट है, और हम उसमें कितने सारे संकल्प वेस्ट करके फिर सेट होते हैं। किसी ने हमको अपसेट कर दिया तो हम अपसेट हो गए, तो बाबा कहते हैं सेट होने में एक हफ्ता लगाते हो, दो दिन लगाते हो, दो घंटे लगाते हो या एक सेकंड लगाते हो, तो समय को देखते हुए ऐसा नहीं परीक्षाएं नहीं आएंगी, परीक्षा तो हमारी अंत तक आएगी। तो जितनी पढ़ाई हम पढ़ेंगे उतना ही दर्जा मिलेगा। किसी ने मैट्रिक को अंतिम पढ़ाई है तो मैट्रिक तक भी उसको पढ़ना पड़ेगा, कोई बीए पढ़ता है तो बीए तक भी उसको लास्ट दिन तक पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो वेलकम है क्योंकि हमारी परीक्षा से हम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बाबा ने हमें बचाव दिए हुए हैं कि ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो, तो फिर हम ड्रामा को ये भी नहीं देखते हम एक्टर हैं। बाबा कहता है जो तुम कर रहे हो अगले 5000 वर्ष ऐसे ही करोगे। ये कितना अच्छा ज्ञान है कि मान लो सुबह सुबह मुझे आलस आ गया कि भी मैंने आज अमृत वेले नहीं जाना, मेरे को थकावट है, मेरा सारा दिन अच्छा नहीं बीतेगा, लेटे लेटे योग कर लेता हूं, ऐसे ऐसे माया अमृत वेले खास अपने एजेंट भेजती है, लेटे लेटे योग कर लेता हूं। बाबा तो कहता है ना थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, आंख तब खुलेगी जब योग का टाइम पूरा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ना मैं अपनी बच्ची को पढ़ाया हुआ कि जब कोई गलती करे उसको सजा दो। अब आप देखिए कि एक्टर जो होता है, एक्टर को तो छोड़ो, अगर आपने फोटो ही खिंचाना हो, अभी कोई कह दे कि आपका फोटो होने वाला है तो आप क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे या इधर ठीक ठाक होके बैठोगे? मेरा फोटो होने वाला है, क्यों? कि फोटो परमानेंट रिकॉर्ड है। नॉर्मली तो आप कैसे भी बैठे हो, पर अगर आप फोटो में वासी ले रहे हो और सदा वो आएगा, कभी कभी नेताओं का आ जाता है अखबार में, अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ने कहा हर वक्त ये समझो कि मैं एक्टर हूं, स्टेज पर हूं। तो ये ड्रामा का ज्ञान है, ड्रामा हुआ और मैं एक्टर ना हुआ। दुनिया के तो लोगों को ड्रामा का ही नहीं पता, वो तो समझते हैं बस दुनिया चल रही है, हमें दुनिया में भेज दिया, पता नहीं कब तक इस ड्रामा ने चलना है, पता नहीं कब से शुरू हुआ, मेरा पार्ट क्या ये भी पता नहीं, मैं कहां से आया हूं ये भी पता नहीं। बाबा ने तो हमको ड्रामा का पूरा ज्ञान दिया। इसलिए ड्रामा के हम कौन से एक्टर हैं? हम बिल्कुल शुरू के एक्टर हैं जो रचता के साथ हैं। इसलिए ड्रामा का ज्ञान सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है। ड्रामा का मतलब ये कि एक्टर तो हर काम एक्टिंग से करता है, वो चाय भी पिएगा तो स्टाइल से पिएगा, इसीलिए उसको एक्टर कहते हैं, चलेगा तो भी स्टाइल से चलेगा। तो हमारा स्टाइल वो होना चाहिए, और कुछ हो गया तो पास्ट इज पास्ट, फुल ब्रेक हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी घटनाएं होंगी, आप सोचो वो घटना हुई खत्म हो गई या मैं उसके ऊपर विचार चलाता रहता हूं, जिसको व्यर्थ संकल्प कहा जाता है। तो क्या होता है कि इन सब चीजों के साथ एक और बढ़िया चीज है जो बाबा ने बताई हुई है कि आपका तीन चीजें तो ये हैं, मैं आत्मा, पिता परमात्मा और ड्रामा। एक और चीज है जो ब्राह्मणों को डिस्टर्ब कर जाती है, वो कौन सी है? वो है दैवी परिवार, ये हमारा परिवार। अच्छा, ये बड़ा वंडरफुल परिवार है, कोई गीत भी गाते हैं कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है, आज संदेशी ने भोग में भी कहा इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है, रिश्ते सबसे कम मात पिता भाई बहन और परिवार सबसे बड़ा। अच्छा, अब ये परिवार विचित्र परिवार है, जैसे शिव की बारात के लिए कहते हैं ना, शिव की बारात में कौन थे? लंगड़े लूले अंधे बहरे हैं, गनका कुब्जा अहल्या ये सब थे, लेकिन जब वो बॉर्डर क्रॉस किया सारे प्रिंस प्रिंसेस बन गए। अब हमें क्या पता कि आप सब देवताओं में सतयुग में कौन कहां था? तो बाबा हमेशा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में किसी का भी आज का रूप मत देखो, ना अपना देखो। अगर हमारा आज का रूप बाबा देखे तो हमें सतयुग में आने के लिए बोला कि बाहर जा, अच्छा तेरे ऐनक लगी हुई है, हैं? अच्छा, तो बाबा कहते हैं आज का रूप तो हमारा लास्ट है। बाबा हमारा कौन सा रूप देख के हमको ज्ञान में लाया है? सारी दुनिया में 600 करोड़ आत्माओं ने बाबा ने आपको क्यों चुना? बाबा तो ऑलमाइटी है, उसका चुनाव तो परफेक्ट है, और कोई तो धोखा भी खा सकता है, लेकिन बाबा ने जो आपको चुना, क्या देख के चुना? आज का रूप देख के चुना? नहीं, बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना, किसी बिरला टाटा को चुन लेता, उनके यज्ञ को चलाने के लिए 5-4 सेठों को बुला लेता, बड़े बड़े नहीं। तो बाबा ने हमारा वो जो आदि रूप है और उससे भी ऊपर जो अनादि रूप है उसको देखकर आपको चुना, हम सबको चुना। अच्छा, हमें जब दूसरे की गलती देखते हैं, देखो ये यज्ञ में आके ऐसा कर रहा है, ये यज्ञ में आके नुकसान कर रहा है, पैसा पैसा गरीब लोग देते हैं, इसको वैल्यू ही नहीं है, बत्ती जगा के छोड़ दी, पानी खुला छोड़ दिया, कैसा व्यक्ति, ब्राह्मण है क्या? अच्छा, या कोई खराब दृष्टि रख रहा है यज्ञ में आकर। बाबा कहता है कि किसी मंदिर में कोई दुराचार कर दे तो उसको बहुत बुरा गिना जाता है, और ये भगवान के घर में ऐसे कर रहा है। बहुत सारी, या तो धोबी घाट है, मैले कपड़े आ रहे हैं तरह तरह के, तो उसमें डिस्टर्ब होना कि अरे यज्ञ में भी ये होता है, आश्चर्य करना, कईयों के मुंह से निकल जाता है इससे तो बाहर वाले अच्छे, ये क्या देवता बनेंगे। अच्छा, लौकिक वाले भी ऐसे ही करते हैं, ज्ञानी का क्या है, कोई बीमार हो गया, अपना कर्म भोग भोग रहा, मैं क्या करूं, होने दो बीमार, लौकिक वाला फिर भी जाएगा ऊपर से पच्ची करेगा, अरे भाई कैसा है, अंदर से कुछ नहीं करेगा। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए ब्राह्मण परिवार में ये एक्सपेक्ट करना कि यहां तो बने बनाए देवता होंगे, अब कोई अमृत वेला ही नहीं कर रहा, भगवान खुद कहता है अमृत वेला करो, नहीं कर रहा, क्या किया जाए। अच्छा, बाबा बड़े प्यार से राय देता है, कहता है बच्चे देख लो, तो काम को जीत लोगे तो सतयुग में आ जाओगे, अब नहीं जीतोगे तो फिर कैसे आओगे, और क्या करेगा बाबा। लेकिन बाबा को ये भी पता है क्या, इस पतित खराब सड़े हुए झाड़ से चेंज करके सतयुग का इतना मीठा झाड़ सुंदर स्वर्ग बनाना और उसमें आत्माओं को लाना, ये बाबा हमें रोज बताता है। एक है दैवी संपदा, दैवी संप्रदाय, और एक है आसुरी संप्रदाय, संगम पर दोनों संप्रदाय इकट्ठे हैं, और संगम पर से पहले आसुरी संप्रदाय है, जो बाबा के यज्ञ में ज्ञान में नहीं आया वो सारा आसुरी संप्रदाय है, उसको में कांटे ही कांटे हैं, क्या कितना भी सुंदर रूप बनाएगा वो आपको तंगी करेगा, या काम का कांटा होगा या क्रोध का होगा, ये कांटे ही कांटे हैं। दैवी संप्रदाय फूल ही फूल है। अच्छा, अब एक तो हम अपने अंदर ही देखें कि हम जब कांटे से फूल बन रहे हैं तो हमारे कांटे घटते जा रहे हैं, फूल बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी सारी दिनचर्या में हम कहीं कोई कांटा तो यूज नहीं कर लेते जो हमारे पास बचा हुआ है, किसी को क्रोध कर दिया, किसी से मूड में आ गए, भाव स्वभाव, हमारा टॉपिक है खुश मिजाज, खुश मिजाज मैंने क्या, हर वक्त खुश क्या, नहीं, ऐसा थोड़ी कभी खुश कभी ना खुश, तो हर वक्त खुश मिजाज कब रहेंगे, जब हम फूलों को दैवी गुणों को यूज करेंगे, सदा दैवी गुणों में खेलेंगे। अगर बीच बीच में किसी कांटे को भी यूज कर लिया तो उस, या बॉडी कॉन्शियस में आ गए, या बाबा को भूल गए, ज्ञानी होते हुए अभी अभिमान में आ गए, या कहा मेरे को कोई पूछे, मैंने इतना सा योग दिया कोई मुझे पूछता ही नहीं, मुझे भी साधारण ज्ञान, कुछ भी आ गया तो क्या होगा, हम टेम्परेरीली उस समय बाप से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बाबा ने कहा जहां बाप है वहां पाप नहीं है, जहां पाप है वहां बाप नहीं है, तो सारे दिन में बाप साथ रहे, रात को भी साथ रहे, हैं? पता आपकी खुशमिजाजी तो सोते हुए भी प्रकट होनी चाहिए। अभी हमारी दादी निर्मल शांता जी ने शरीर छोड़ा, हम 24 घंटे बाद उनके जब लास्ट संस्कार हो रहे थे गए, तो देखा उनका चेहरा उसी प्रकार से फ्रेश, उसी प्रकार से शांत। किसी की मृत्यु होती है तो भी लोग चेहरा देखते हैं कि बड़ा शांत देखो चेहरा है, किसी का उलझन वाला होता है। तो यहां पर तो रात को भी कोई आपको देखे तो खुश मिजाज दिखना चाहिए है? कहते हैं एक भाई था, वो आंखें बंद करके शीशे के सामने खड़ा था, घर में आईना होता ना बड़ा बड़ा लाइफ साइज। उसकी पत्नी आई, बोली क्या कर रहा है? कहता है देख रहा हूं मैं रात को सोते हुए कैसा लगता हूं। हाँ जी, तो ऐसा भी होता है। पर आपको कोई सोते हुए देखे तो क्या कहे, वाह मस्त सो रहे हैं। मम्मा हमारी को हमने देखा, मम्मा रजौरी गार्डन में आई थी, तो रजौरी गार्डन के मकान में बाहर गर्मियों का मौसम था, मम्मा का बिस्तरा किया गया। सुबह मम्मा उठी तो हमने देखा जैसे कोई फूल को रख दे और फूल हट जाए, मम्मा की चादर में एक भी बल नहीं था। अच्छा, ऐसे भी भाई बहने हैं, सुबह अपनी चादर देखें तो ऐसे लगता है जैसे कुश्ती की हुई हो, कितने उसमें वो बल पड़े होते हैं। तो संस्कारों का ही खेल है ना, इसलिए हमें अपने संस्कारों को खुशनुमा रखने के लिए ये चार चीजें हैं। एक तो अपने चारों सब्जेक्ट पर ध्यान रखें, उससे आपकी खुशी बढ़ेगी। जब किसी की कमाई होती है तो वो और काम में ध्यान ही नहीं देता। बाबा कहते थे कि जब बॉम्बे में शिप आते थे तो उसमें बिजनेसमैन शिप के वक्त जाके जो शिप में उनसे बिजनेस करते थे तो शिप रात को भी आ जाते थे, लेकिन बिजनेसमैन को क्योंकि बहुत कमाई होती है उसमें वो सोना जागना सब भूल जाता था। वैसे भी आप देखो कोई दुकानदार शटर बंद कर रहा है, आधा बंद किया है, कस्टमर आ गया, उसने कहा अच्छा अच्छा आप बंद कर रहे हैं कल आ जाओ, नहीं 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 ठहरो, शटर खोल के ग्राहक को ढूंढेगा। और इसी तरह से भोजन कर रहा है दुकानदार, कस्टमर आ गया तो भोजन छोड़ के भी करेगा। तो जब कोई उबासी लेता था तो बाबा कहता था इसकी कमाई नहीं हो रही, इसलिए देखो जो खाली बैठा होगा वो उबासी लेगा। तो इसी प्रकार से अगर आपकी खुशी बढ़ रही है तो आपका उमंग उत्साह के पर लगे रहेंगे, और जो ही कमाई बंद हुई तो आलसल बेलापन आएगा। तो आलसल बेलापन हवाई जहाज को नीचे ले आता है और उमंग उत्साह ऊपर ले जाता है, और उमंग उत्साह कमाई से ही हो सकता है, चढ़ती कला होती है। सतयुग में इतना अथाह धन होता है, कोई दुख नहीं होता, लेकिन वहां उमंग उत्साह बढ़ नहीं सकता, जितना है उतना ही रहेगा, दुख नहीं होगा, अगले जन्म में थोड़ा सा जूं की स्पीड पर घटेगा। और संगम पर, संगम हमारा एक ऐसा युग है जिसमें आप जितनी कमाई बढ़ाना चाहो कर सकते हो, इसलिए उमंग उत्साह के लिए चार सब्जेक्ट पर ध्यान देना। मैं स्टूडेंट हूं, मेरी पढ़ाई बंद नहीं हो गई, दादी जानकी भी पढ़ती हैं, अगर वो अमृत वेला करती है तो मेरे को क्या अधिकार है मैं सोचूं मैंने सब कुछ कर लिया, एक अमृत वेला मिस किया मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप ज्ञान का कोई भी नियम तोड़ोगे आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा, आप देख लो आपकी, क्योंकि कुछ खो दिया है ना, ऊपर से कितना भी मेकअप करो कि मैं थका हुआ था, लेकिन अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा। और जरा सी मेहनत करके कमाई पे बैठ जाओ आपको वो सारा आलस वालस भाग जाएगा, करके देखो। और इसी प्रकार से फिर इन खुशी बढ़ती हुई को, कमाई एक चीज है, कमाई को कायम रखना दूसरी चीज है। कई लोग कमाते बहुत हैं लेकिन साथ साथ लूट भी जाता है, उनका बचता कुछ नहीं है, तो उस लूटने को भी बचाना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है निमित्त, मैं निमित्त हूं बाबा तेरी मेहरबानी जो मुझे अपने इसमें बच्चा बनाया, फिर मुझे जो कुछ काम दिया, आप अगर ना देते तो मैं क्या करता। तो सारा बाबा के निमित्त हूं, निर्माण चित्त कभी अभिमान नहीं करना। और इस अध्यात्मिक ज्ञान का एक असूल है सादगी, सिंपलिसिटी। जितनी हम सादगी मन की भी रखेंगे बाहर की भी रखेंगे तो आप मस्त फकीर हैं, बेफिक्र बादशाह हैं, आपको अति इंद्रिय सुख सदा रहेगा। जैसे किसी मस्त व्यक्ति को कुछ ज्यादा इधर उधर का पता ही नहीं रहता, आपको वैसा लगेगा और अलौकिकता में रहे। तो बाबा जब कहते हैं फरिश्ता रूप तुम्हारा नेक्स्ट हमारा जो अगला रूप है वो फरिश्ता रूप है। सीधे हम परम धाम में नहीं जा सकते, पहले फरिश्ता रूप में धारण करना। तो फरिश्ता रूप शरीर छोड़ने के बाद धारण करना है या शरीर में रहते धारण करना है, क्या ख्याल है आपका? हाँ, तो यहां रहते ही आप फरिश्ता रूप से कुछ भी कर सकते हो। यहां फरिश्ता रूप सोच के यहां से माउंट आबू पैदल चले जाओगे, आपको थकावट नहीं होगी। और जो ही आपने कहा बॉडी, थक गए। इसलिए काम करते हुए भी आप मान लो भीड़ है, कहीं भोजन के लाइन लगी हुई है, कहीं ऐसा है, आप फरिश्ता रूप धारण कर लो, आपको कुछ नहीं होगा। जो ही बॉडी में आए आपको सब कुछ हो जाएगा। ये बहुत फायदे का रूप है, क्योंकि फर्श से आपका रिश्ता नहीं। तो मुरली में बाबा ने क्या कहा है कि अपने यहां के रिश्ते नाते कर्म के हिसाब किताब समाप्त करो, नए जोड़ो नहीं, क्योंकि अभी हमें शरीर तो सबको छोड़ना है, पर किसी ने सजा खा के जाना है, किसी ने विद ऑनर जाना है और ग्रीन चैनल से जाना है, और दूसरे को भी ले जा सकता है वो। तो जैसे एयरपोर्ट पे या दूसरे देश में जाने के वक्त चेकिंग करते हैं, वो तो फिर भी इंसान होते हैं, मशीनें, वहां आपकी चेकिंग होगी, कोई भी कलयुगी संस्कार तमोगुनी संस्कार कोई भी कांटा वहां नहीं जाएगा। इसलिए फूल ही फूल धारण करो, क्योंकि वो फूलों की दुनिया है, वहां कांटे नहीं जा सकते। सीधा हिसाब है, फूलों की दुनिया में जाना है तो कांटों का इस्तेमाल बंद, कांटों को जला दीजिए। शक्तियां और गुण, कौन सी शक्तियां? ये नहीं धन की शक्ति, बाहुबल की शक्ति, कोसना दैवी शक्तियां, जो उसको आठ शक्तियां कहते हैं। रोज चेक करिए, मेरे में समाने की शक्ति है, कईयों में होती है, सामना करने की है, कईयों में नहीं होती है, है? निर्णय शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है। तो आजकल बाबा ने टेस्ट दिया हुआ है कि हर एक को जिसको राजा बनना है यहां 100 का और वहां, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोलिंग पावर डंडे की नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करने की पावर है। हम अपने मन को जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें लगा सकें और जब चाहें हटा सकें, ये है हमारी अभ्यास। अभी मन एक तरफ लग जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा, एक तरफ लगाने की कोशिश करोगे तो लगेगा नहीं, ये नेचुरल। इसी के लिए बाबा ने हमें ये यात्रा दी है कि सुदर्शन चक्कर घुमाओ। अभी अभी मेरा मन मैं इस बॉडी में हूं, अभी अभी मैं सूक्ष्म लोक में हूं, अभी अभी मैं बिंदु रूप परम धाम में हूं, अभी अभी मैं सारे विश्व की आत्माओं को, आज भी बाबा ने कितना समझाया है कि मैं उनको लाइट हाउस बन के सकाश दे रहा हूं, ताकि इन सबको भी परम धाम में जाना है। फिर मैं अभी अभी सतयुग में हूं, वहां से भी आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं, कितने वर्ष वहां रही है। फिर मैं द्वापर में भक्ति में आ गया, फिर देखो क्या क्या किया, लेकिन भक्ति में भी कितनी नवदा भक्ति हमने की, कितने लोग हमारे मंदिरों को देखने जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कलयुग को नहीं याद करो, वो तो हो ही, संगम में आ जाओ, संगम तो वंडरफुल है, आगे भी पता है पीछा भी पता है, बाबा साथ है। इस चक्कर में चलाओगे तो इसमें सारी दुनिया के सारी सीन आ जाते हैं। तो इसमें न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास करेंगे तो आपकी खुशी परमानेंट रहेगी। बॉडी मानेंगे तो टेम्परेरी में खुशी कहाँ आ जाएगी, परमानेंट, परमानेंट खुशी रहेगी। खुश नसीब, इतना बड़े खुश नसीब कि दूसरों का भी नसीब आप बना सकते हैं, और फिर नेचुरली खुश मिजाज रहेंगे, फिर चिड़चिड़ेपन की जरूरत नहीं। किसी भी मर्यादा को तोड़ेंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा, टेम्परेरीली मुंह लटक जाएगा, जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाए, उसमें भी बाबा कहता घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, बादल चले जाएगा। कोई गड़बड़ हो तो मुझे दे दो, मैं बैठा हूं, आप हल्के रहो। ओम शांति।
पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया।